नकद धर्म है अध्यात्म। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असली व नकली का अंतर जाने। देवियों भाइयों,
धन बल की कीमत पर हम तुरंत अभीष्ट चीजें खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम अभी मिठाइयां खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, सवारी खरीद सकते हैं। जिस चीज की भी जरूरत है उसे हम खरीद सकते हैं, अगर वह वास्तविक धन है तब।
अगर वह नकली धन हो तब
उससे हम कुछ नहीं खरीद सकते।
1000 रुपये का नकली नोट दीजिए और दुकानदार से कहिए कि भाई साहब 1000 रुपये का कपड़ा दीजिए। भाई साहब,
यह तो नकली नोट है, इसमें तो हम नहीं बेच सकते। नकली चीजें हमको मुनासिब कीमतें नहीं दे सकती।
नकली गाय दूध नहीं दे सकती। एक बच्चा बाजार से एक नकली गाय खरीद कर लाया। बेटे,
कितने की लाया?
पिताजी,
40 पैसे की खरीद कर लाया। अच्छा, तो इस गाय का क्या करेगा?
दूध दुहा करूंगा।
कितना दूध निकलेगा?
4 किलो दूध निकलेगा।
मम्मी तुम भी पीना, पापा तुम भी पीना, हम भी पियेंगे और अपनी छोटी बहन को भी पिलाएंगे। अच्छा बेटे, तुम्हारी गाय कहाँ है?
जरा दिखाना तो सही। पिताजी, यह रही गाय।
अच्छा, तो इसमें से दूध निकाल।
अरे,
यह तो नकली है, मिट्टी की गाय है। मिट्टी की गाय से दूध नहीं निकल सकता, लेकिन अगर गाय असली हो तो 4 किलो क्यों, 6 किलो भी दूध निकल सकता है, जिसे सब उपयोग में ला सकते हैं।
असली व नकली अध्यात्मवाद। मित्रों, आज अध्यात्मवाद भी दो तरह का चारों तरफ दिखाई पड़ता है, एक नकली अध्यात्मवाद और दूसरा असली अध्यात्मवाद।
नकली अध्यात्मवाद वह है जिसके बारे में हमको यह कहना पड़ता है कि इसके परिणाम मरने के बाद में मिलेंगे। असली अध्यात्मवाद वह है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम मिलने में 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। इसमें नकद धर्म के तरीके से इस हाथ दीजिए और उस हाथ इसके परिणाम लीजिए। अगर असली अध्यात्म है तो इसके परिणाम हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और अगर नकली है तो इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा।
क्या आपको यह आश्वासन दिलाना पड़ेगा कि मरने के बाद क्या होगा? मित्रों,
मरने के बाद क्या होता है और मरने के बाद में कहाँ जाना पड़ेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत दिन पहले की बात है, हमने बहुत तरह की पुस्तकों में और बहुत तरह के शास्त्रों में पढ़ा था कि मरने के बाद क्या होता है। कोई कहता है कि मरने के बाद में हम स्वर्गलोक में चले जाते हैं, तो कोई कहता है कि चंद्रलोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में मैंने बहुत से लोगों का वर्णन पढ़ा था, तभी मुझे यह मालूम पड़ा कि सबसे खूबसूरत जो लोक है वह चंद्रलोक है।
चंद्रलोक में अमृत का घड़ा भरा रहता है। अंग्रेजी भाषा के मुताबिक चंद्रलोक में एक खूबसूरत महिला सी मून बैठी रहती है।
वह लोगों को अमृत पिलाया करती है। भला इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है?
इसलिए चंद्रमा पर जाने के लिए हमने अपना नाम रिजर्व करा लिया था, अपनी सीट रिजर्व करा ली थी कि मरने के बाद स्वर्गलोक में चंद्रलोक में चला जाऊंगा।
पीछे जब रॉकेट गए तो मालूम पड़ा कि वहां तो हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि वहां दिन में लोहा भी पिघल सकता है, और रात में इतनी ठंडक पड़ती है कि ठंड के मारे हड्डियां तक जकड़ सकती हैं।
फिर मैंने अपना नाम कैंसिल करा लिया। अब मैं चंद्रलोक नहीं जा सकता। नकद धर्म है अध्यात्म। मित्रों,
जब हमें गर्मी महसूस होती है तो हम छाया में, ठंडक में जा बैठते हैं, और तुरंत 1 सेकंड का विलंब हुए बिना हमको छाया अच्छी मालूम पड़ती है। बर्फ पी लेते हैं तो कलेजा 1 सेकंड में ठंडा हो जाता है। चाय पी लेते हैं तो 1 मिनट बाद शरीर में गर्मी आ जाती है।
जो अध्यात्म हमको यह सिखाता है कि मरने के बाद और आज से 1000 वर्ष बाद परिणाम मिलेंगे, बेटे,
ऐसे अध्यात्म पर हम यकीन नहीं कर सकते कि यह अध्यात्म सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है।
अगर अध्यात्म सही है तो उसका परिणाम उसी समय मिलना चाहिए और अभी मिलना चाहिए और आज ही मिलना चाहिए।
हमने अपने आप को जिंदगी भर इसी कसौटी पर कसा है और पाया है कि यह नकद धर्म के तरीके सही है।
मित्रों, नकद अध्यात्म वह अध्यात्म है जो हमको अपने भीतरी क्षेत्र को परिष्कृत करना सिखाता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण नंबर 1 जो हमें यह सिखाता है कि भौतिक चीजों के द्वारा हमको सुख मिलेगा, हमको वस्तुएं मिलेंगी तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, खूबसूरत स्त्री मिलेगी तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, खूबसूरत स्त्री मिलेगी तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा,
हमारी इच्छा के मुताबिक बाहर वाली चीजें मिल जाएंगी तो हमको सुख शांति दे पाएंगी। जितनी तादाद में हम पैसा चाहते हैं उतनी तादाद में यदि पैसा मिल जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा और प्रसन्नता मिल जाएगी। यह है दृष्टिकोण नंबर 1, जो बाहर वाला भौतिकवादी दृष्टिकोण है और जो यह कहता है कि हम जो चाहते हैं वह चीज यदि हमें उसी तरीके से मिल जाए तो हम दुनिया में सुखी रह सकते हैं।
क्या है अध्यात्मवादी दृष्टिकोण?
नंबर दो वाला दृष्टिकोण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है, जो कहता है कि अगर हम अपनी भीतर वाली स्थिति को सुधार लेंगे तो सेकंडों के भीतर हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और जो सुख हमसे हजारों मील दूर है वह हमारे नजदीक आ सकता है और हमारे चरणों को चूम सकता है।
यह अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है।
भौतिकवादी दृष्टिकोण वह है जो हमको बाहर वाली चीजों के सहारे सुख और शांति का आश्वासन दिलाता है और यह कहता है कि जो हम चाहेंगे अगर वह चीजें मिलेंगी तो हमको सुख मिल सकता है और प्रसन्नता मिल सकती है।
मित्रों,
जो चीजें आप चाहते हैं हम नहीं कह सकते कि वे आपके लिए फायदेमंद बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी दुनिया की है हमारे लिए शांतिदायक नहीं हो सकती। दुनिया की जितनी भी चमकदार चीजें हैं वे जब तक हमारे पास नहीं आती तब तक हमको ऐसी मालूम पड़ती हैं कि वे हमारे लिए फायदेमंद हैं और हमारे लिए सुख देने वाली हैं। जब हम उनके नजदीक जाते हैं तो वे ऐसी मालूम पड़ती हैं जैसे सांप। सांप बाहर से बड़ा सुनहरा मालूम पड़ता है, चमकदार मालूम पड़ता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो काटने दौड़ता है, दंश मारने दौड़ता है। आग दूर से बड़ी चमकदार मालूम पड़ती है, खूबसूरत मालूम पड़ती है, लेकिन जब हम उसके ज्यादा नजदीक जाते हैं तो हमको जलाने के लिए लपकती है। बाहर वाली संपदाएं जिनके बारे में आम लोगों का यह ख्याल है कि अमुक अमुक चीजें मिल जाएंगी तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमको सुख मिल जाएगा।
दूर के ढोल सुहावने। मित्रों,
मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि जब तक जो चीज जिसको नहीं मिली है उसके लिए वही चीज सबसे ज्यादा अच्छी है और ज्यादा आकर्षक मालूम पड़ती है। मसलन आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए बीबी बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ती है कि जब वह घर में आएगी तो स्वर्ग लेकर के आएगी, परी के तरीके से पंख लगा करके आएगी,
नाचती हुई आएगी और स्वर्ग की संपदाएं लेकर के आएगी। कब तक?
जब तक कि आपका विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने के बाद में आपको यह महसूस होगा कि हमने गलती कर दी।
जब तक अकेले थे 250 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मौज करते थे, सिनेमा जाया करते थे,
होटल में ठहरते थे, बहन भांजी की भी मदद कर सकते थे,
जब चाहे उनके यहाँ चले जाते थे। अब बीबी आ गई, मकान किराया लीजिए साहब, 100 रुपये महीने का मकान किराया है, 150 रुपये बचेगा,
चलिए साहब
सिनेमा देखने चलें।
अरे साहब अब सिनेमा कहाँ से चल सकते हैं,
अब तो 150 रुपये में 2 आदमियों का गुजारा भी मुश्किल पड़ेगा।
घर परिवार एवं रिश्तेदारी में ब्याह शादी भी होती है।
साहब हमारे भाई का विवाह है, मैं तो जाऊंगी और अपनी भावज को मुंह दिखाई में सोने की एक अंगूठी दूंगी। आजकल सोना 600 रुपये में 1 ग्राम मिलता है, अगर आधे ग्राम की भी अंगूठी दीजिए तो 300 रुपये में आएगी।
महीने भर में 250 रुपये मिलते हैं जिसमें 100 रुपये मकान किराया का चला जाता है, 150 रुपये बचते हैं, अगर वे भी खर्च हो गए तो महीने भर खाएंगे क्या?
साहब अपने भाई को अंगूठी नहीं दूंगी तो उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी।
आप मेरे लिए कपड़े बनवा कर लाइए और चीज बनवा करके लाइए।
अरे बाबा
यह कौन सी मुसीबत आ गई।
अजी जरा देखिए तो सही, अगले वर्ष इतने बच्चे पैदा करना शुरू करती हूँ तब आपको दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। अब साहब यह कौन सी आफत आ गई। बेटे यह आफत तो आनी ही थी, जब तक वह दूर थी तब तक वह बड़ी सुहावनी थी और बड़ी अच्छी मालूम पड़ती थी और आकर्षक मालूम पड़ती थी। मित्रों
अभी आगे और भी आकर्षण विद्यमान है।
गुरुजी
देखना हमारे हाथ में बाल बच्चों की रेखा है कि नहीं है, इसमें तो नहीं है, बस लकीरें खींची हुई हैं, पर बाल बच्चे तो नहीं मालूम पड़ते।
अच्छा तो महाराज जी
इस हाथ में देखिए कोई ना कोई बच्चा तो जरूर होगा।
बेटे जब तक बच्चा नहीं था तब तक मालूम पड़ता था कि जब बच्चा आएगा तो जाने कौन आएगा, जाने रामचंद्र जी आएंगे, कृष्णचंद्र जी आएंगे, जाने श्रवण कुमार जी आएंगे, जाने कौन कौन जी आएंगे।
जब तक ना आए थे तब तक कुंवर साहब थे और जिस दिन से घर में आ गए, जिस दिन से घर में पैदा हो गए, सारे घर में टट्टी करके उसे नरक बना दिया। जिस दिन से पैदा हुआ दिन और रात का सोना हराम कर दिया। जब से बड़ा हुआ उस दिन से इसके ब्याह के लिए पैसा लाइए, अमुक के लिए पैसा लाइए, तमुक के लिए पैसा लाइए, इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी अकल, इतना पसीना, इतनी मेहनत हमने इन 3-4 गुड्डों के लिए खर्च कर दिया। आत्मोत्थान के लिए भी लगाएं अपना समय व श्रम।
अगर इतनी अकल हमने अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने आत्मोत्थान के लिए खर्च कर दी होती तो विवेकानंद हो सकते थे, समर्थ गुरु रामदास हो सकते थे, कबीर हो सकते थे और जाने क्या हो सकते थे।
लेकिन जब से ये अभागे हमारे घर में पैदा हुए, तब से हमारी हड्डियां और रक्त, मांस और हमारा ईमान, लोक और परलोक सब खा गए।
मालूम पड़ते थे कि वे न जाने कितने खूबसूरत और कितने चमकदार हैं, परंतु न तो वे खूबसूरत निकले और न चमकदार निकले। केवल दुर्भाग्य लेकर के हमारे घर आए और अपना और हमारा भविष्य अंधकारमय बनाने वाले निकले। मित्रों,
दौलत भी बाहर से बहुत चमकदार दिखाई देती है। दौलत, पैसा जब तक पास में नहीं था, तब तक यह मालूम पड़ता था कि जब यह मिलेगा तो जाने क्या से क्या मिल जाएगा और जाने हम कौन हो जाएंगे। जब पैसा आ गया तो मालूम पड़ा कि कलह की निशानियां लेकर के आ गया। चोर, उठाईगीर, साले और बहनोई, जमाए और भाई भतीजों में इस तरह आपस में कलह उत्पन्न हो गई कि लगता है कि इस पैसे की वजह से एक दूसरे की जान चली जाएगी।
पैसे के कारण इनकम टैक्स वाले, दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, चंदा मांगने वाले, पार्टना वाले इस कदर प्राण खाने लगे कि रात को भी नींद हराम हो गई।
पैसा नहीं था तो मौज करते थे, शाम को आ जाए तो सवेरे खा लिया, सवेरे को आ जाए तो शाम को खा लिया, मौज करते थे और किवाड़ बंद करके सोते थे। लेकिन जब से पैसा आया है, नींद हराम हो गई है।
तो मित्रों,
मैं पैसे की निंदा कर रहा हूँ? नहीं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि जो बाहर वाली चीजें हैं, जिनके बारे में हम और आप यह ख्याल करते हैं कि यदि वे इच्छानुसार मिल जाएंगी तो फिर हमको सुख मिल जाएगा और हमको शांति मिल जाएगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि बाहरी चीजों से आज तक किसी को भी सुख शांति नहीं मिली है और न मिल सकती है।
जलती हुई आग में कितना भी घी डालिए, अच्छा तेल डालिए, मिट्टी का तेल डालिए, आग भड़कती ही जाएगी।
मनुष्य के पास जितना सामान इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा, उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उसकी तृष्णाएं ठीक उसी प्रकार से बढ़ती हुई चली जाएंगी जिस प्रकार से जलती हुई लकड़ी के ढेर के ऊपर घी तेल डालने से आग भड़कती हुई चली जाती है। आदमी की ख्वाहिशें भी दिन दूनी इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाती हैं।
उनके समाधान नहीं हो सकते।
क्या है बढ़ती ख्वाहिशों का समाधान?
मित्रों,
समाधान किस तरीके से हो सकता है? समाधान होने का तो सिर्फ एक ही तरीका है जो रामायण में है और सुरसा के बहाने से समझाने की कोशिश की गई है। सुरसा एक राक्षसी थी और वह रावण की ओर से मुकर्रर कर दी गई थी कि यदि कोई लंका पर चढ़ाई करने वाले आ गए तो जरा देखना, पता लगाना और पकड़ लेना। हनुमान जी जब अंदर जाने लगे तो उसने उन्हें पकड़ लिया और मुंह में रखकर चबाने लगी।
हनुमान जी ने कहा कि इससे तो पिंच छुड़ाना चाहिए। हनुमान जी ने अपना बदन बढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी शक्ल बढ़ाई तो सुरसा ने अपना मुंह फाड़ दिया और फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपी रूप दिखावा। बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने देखा कि सुरसा का मुंह 22 मील का हो गया है तो हनुमान जी 28 मील के हो गए।
अभी तो और बढ़ेगा और यह अपना मुंह और चौड़ा करती चली जाएगी और हजारों मील चौड़ा मुंह कर लेगी।
तब तो बड़ी आफत हो जाएगी।
ये सुरसा कोई कम होने वाली है क्या? आखिर में क्या करना पड़ा?
अति लघु रूप पवनसुत कीन्हा, बहुत छोटा सा रूप बना लिया, मसक समान रूप कपिधरी। छोटा सा रूप बना करके सुरसा की दाढ़ से निकलकर हनुमान जी भाग गए। दृष्टिकोण का परिवर्तन है अध्यात्म। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण है और दूसरा वाला भौतिकता का दृष्टिकोण है।
भौतिकवाद और अध्यात्मवाद विचार करने की यह दो श्रेणियां हैं, सोचने के तरीके हैं।
सोचने का एक तरीका यह है कि हमारी इच्छानुकूल वस्तुएं मिलें, तब हम दुनिया में सुखी रहेंगे। इसका नाम भौतिकवादी दृष्टिकोण है।
अध्यात्म एक दूसरे तरह के दृष्टिकोण का नाम है जो हमारे भीतर वाले सोचने के तरीके को ठीक करता है। अगर हमारा चिंतन सही हो जाए तो हमारी आकांक्षाएं पूरी की जा सकती हैं। एक कहता है कि हमें वस्तुएं बहुत ज्यादा तादाद में मिल जाएं, तो हमारी आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं।
मित्रों,
मैंने असली अध्यात्म को अपनी जिंदगी में प्रयोग करने की कोशिश की और यह देखा पाया कि जिस चीज की मनुष्य इच्छा करते हैं वह हमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। हर आदमी मनोकामनाएं लेकर के आया है। देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं तो मनोकामनाएं लेकर के जाते हैं। क्यों साहब? कौन सी देवी के पास गए थे?
साहब,
मनसा देवी के पास गए थे। मनसा देवी के पास किस काम के लिए गए थे? ठीक है, आप अपनी मनसा पूरी कराने के लिए मनसा देवी के पास गए थे। हर आदमी अपनी मनोकामनाएं लेकर के साईं बाबा के पास जाता है, शंकर जी के पास जाता है, आचार्य जी के पास आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए आता है, परंतु मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी आदमी की आज तक कहीं से भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि मनोकामनाओं की कोई सीमा नहीं हो सकती।
मित्रों,
आपकी मनोकामना आज इस सीमा तक है, कल उस सीमा तक बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल उससे दूनी न हो जाए, आपके पास इसकी कोई शक नहीं है। सुरसा के मुख की तरह बढ़ती हैं तृष्णाएं। आज आप भूखे मरते हैं और कल 1000 रुपया मिल जाए तो आपकी इच्छा कल तक पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन 1000 रुपया मिलेगा उसी दिन 10000 रुपये की कामना तीव्रता के साथ उठ खड़ी होगी और कहेगी कि 10000 रुपये से कम में काम नहीं चल सकता।
साहब,
अगर एक दुकान लेना चाहे तो 1000 रुपये में उसकी पगड़ी भी नहीं दी जा सकती।
गुरुजी, 10000 तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी, आपने यह क्या आशीर्वाद दिया, 1000 से क्या बनेगा? इससे तो आप आशीर्वाद मत दीजिए। 1000 रुपये का देना है तो 10000 का दीजिए। मित्रों, जिस दिन हम 10000 देंगे उस दिन आप कहेंगे कि साहब 11000 रुपये तो दुकान की पगड़ी वाले को देना पड़ेगा।
10000 जो आपने दिलवाया था वह चला गया और 1000 रुपये घर वालों का चला गया। अब दुकान के किराए के लिए और सामान के लिए रुपये लाइए, तब तो काम बनेगा।
अरे बेटे, इतने रुपये कम पड़ गए। हाँ साहब, कम पड़ गए। हाँ बेटे, सिकंदर को भी पैसे कम पड़ गए थे।
सबको पैसा कम पड़ गया था और आपको भी कम पड़ जाएगा।
आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती।
न धन से हो सकती हैं, न संतान से हो सकती हैं, न ताज से हो सकती हैं और न तख्त से पूरी हो सकती हैं।
आज तक किसी की भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी।
रावण की नहीं हो सकी, सिकंदर की नहीं हो सकी, हिरण्यकशिपु की नहीं हो सकी, किसी की भी नहीं हो सकी। फिर हमारी और आपकी कैसे हो सकती है?
आध्यात्मिक विभूति है आप तक काम होना। लेकिन मित्रों,
अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में मैंने पाया कि हमारी मनोकामनाएं 100% पूरी की जा सकती हैं। हम आप्तकाम हो सकते हैं।
संस्कृत में एक नाम आता है आप्तकाम। आप्तकाम का अर्थ होता है जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों।
क्या कोई ऐसा आदमी है जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों? हाँ बेटे, जमाने में जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं ऐसे आदमी हैं जिनको कहने का हक है कि हमारी कोई मनोकामना बाकी नहीं है और जो भी हमने कहा था पूरा हो गया। अब हम पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। अपनी आकांक्षाओं के बारे में ऐसा कहने वाला आदमी कौन हो सकता है?
ऐसा आदमी वही हो सकता है जिसके पास कल्पवृक्ष हो।
पुराणों में वर्णन है कि स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष नाम का पेड़ है।
इस पेड़ के नीचे एक आदमी जा बैठा। उसने चाहा कि अमुक चीज मिल जाए, वह मिल गई। वह जो भी चीज चाहता था वह मिलती चली गई।
कल्पवृक्ष की व्याख्या इसी रूप में की गई है कि इसके नीचे आदमी बैठकर जिस चीज को चाहे वह चीज उसी तादाद में उसी तरीके से मिलती चली जाती है।
आध्यात्मिक उपहार है कल्पवृक्ष। मित्रों, कल्पवृक्ष आध्यात्मिकता का एक उपहार माना गया है। अगर किसी के पास असली अध्यात्म होगा तो उसको कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से जो फायदा होना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, उसको मिल सकता है।
अगर किसी के पास असली अध्यात्म नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। आप पता लगा लेना कि जिसके पास असली अध्यात्म है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं कि नहीं हुई। बेटे, परिपूर्ण होना संभव है।
कौन कौन परिपूर्ण हो सकता है? ऋषि परंपरा के सारे व्यक्ति परिपूर्ण होते चले गए हैं। पाइथागोरस बैठा हुआ था,
उसके पास सिकंदर गया और उनसे पूछा कि बताइए आपके लिए किसी चीज की आवश्यकता है। बताइए, आप तो अकेले मालूम पड़ते हैं और आप तो नंगे मालूम पड़ते हैं। आपके पास कपड़े भी नहीं हैं। आप संत हैं और हमारी हुकूमत में रहते हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
उन्होंने कहा, राजन,
हमने अपनी जितनी भी जरूरतें थी उन्हें इतना कम कर लिया है कि अब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। सिकंदर को बुरा लगा कि हम इतने बड़े बादशाह हैं और इनसे यह कहने आए थे, फकीर से जो नंगे बदन बैठा हुआ है, जिसके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, खाने के लिए इसके पास एक दिन के लिए इंतजाम नहीं है, बर्तन जिसके पास नहीं है और वह यह कहता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है।
इससे राजा को गुस्सा आया और बुरा लगा, बुरा मानकर वह चलने लगा। तो पाइथागोरस ने सोचा कि राजा आया है, इसको नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने सिकंदर से कहा कि अच्छा आइए बैठिए। वह बैठ गया।
आप तो हमारी इच्छा पूरी करने आए थे तो जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें आप पूरी कर देंगे। हाँ, आप बताइए, हम उन्हें पूरी करेंगे। सिकंदर ने फकीर से पूछा, कहिए आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? उसने कहा कि सवेरे का वक्त है, ठंडक पड़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारी ठंडक दूर हो जाए और हमको गर्मी मिल जाए। उन्होंने कहा कि यह बात आपने पहले क्यों नहीं कही? उन्होंने नौकरों से कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी काट कर लाओ, कोयले का इंतजाम करो,
कंबल दे दो और इनके लिए लिहाफ खरीद दो, इनके लिए सारे इंतजाम कर दो। पाइथागोरस बोले, नहीं साहब,
हमारा लिबास दूसरा है। हम सूरज की धूप के अलावा किसी और चीज की गर्मी से अपने शरीर को गर्म नहीं करते। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी सी सूरज की धूप निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि सूरज की धूप तो हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो यह आपके काबू से बाहर है।
हाँ,
यह हमारे काबू से बाहर है, हम यह नहीं कर सकते। मैं तो भूल गया था, मुझसे गलती हो गई कि हमें आपसे वह चीज मांगनी चाहिए थी जिसको आप पूरा कर सकते हैं। सिकंदर ने कहा, हाँ, आप वही चीज मांगिए जो हमारे पास है और जिसे हम पूरा कर सकते हैं।
सिकंदर पूरब की तरफ खड़ा हुआ था, सूरज निकलने वाला था।
थोड़ी देर में पूरब की ओर से निकलने वाली सूरज की गर्मी पाइथागोरस के शरीर को गर्म करने वाली थी। उसने कहा कि आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि पूरब की ओर से हटकर पश्चिम में जाकर के बैठ जाइए। सूरज की जो किरणें अभी अभी आने वाली हैं और हमारे शरीर को गर्म करने वाली हैं, और हमारे और सूरज के बीच में आप जो रुकावट बनाकर खड़े हो गए हैं, अपनी उस रुकावट को दूर कीजिए और उधर हटिए। यह तो आप कर सकते हैं।
बस मनोकामना पूरी हो गई। सिकंदर चुपचाप बैठ गया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। विशेष उद्देश्य से बनी है यह दुनिया। मित्रों,
हम दुनिया में से कांटे नहीं बीन सकते।
कांटे कितने सारे फैले हुए हैं।
यह हमारे काबू से, हमारे बूते से बाहर है कि हम दुनिया में से कांटों को बीन सकें। लेकिन यह हमारे काबू में है कि हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें, और पहनने के बाद में दुनिया में जहां कहीं भी कांटे दिखाई पड़ते हों, जहां कहीं भी आपको ठोकरें दिखाई पड़ती हों, उन ठोकरों वाली जगह पर, कांटों वाली जगह पर आप दंदनाते हुए चले जा सकते हैं। तब कोई कांटा हमारे पैर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और कोई कंकड़ हमारे पैर को चोट नहीं पहुंचा सकता। कांटे हम नहीं बीन सकते तो क्या हुआ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दुनिया के हम ठेकेदार नहीं हैं। दुनिया हमारी बनाई हुई नहीं है और न वह हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगी। हम वायदा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया केवल हमारे लिए नहीं बनी है। दुनिया जाने कितने लोगों के लिए बनी है और किस उद्देश्य से बनी है, और जाने किसने बनाई है।
साहब, हमारा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। भाई साहब,
आपका बच्चा जिंदा रहेगा तो पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। नहीं साहब, हमारे घर में किसी की मौत न होने पावे। अगर आपके घर में किसी की मौत नहीं होगी तो किसी के घर में फिर नया बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आपके यहाँ कोई मरेगा तो पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा होगा। अरे साहब, फिर तो हमारे घर में रोना पीटना मच जाएगा। बेशक आपके घर में जिस दिन रोना पीटना मचेगा, पड़ोसी के घर में उसी दिन ढोलक बजना शुरू हो जाएगा और बताशी बंटने शुरू हो जाएंगे। नहीं साहब,
हमारे घर में सभी को जिंदा रहना चाहिए और घर में बच्चा पैदा होना चाहिए।
आपके घर में बच्चा पैदा होगा तो किसी न किसी के घर में गमी होगी, किसी न किसी के घर में रोना पीटना मचेगा। नहीं साहब,
हमारी मर्जी चलनी चाहिए।
बेटे, आपकी मर्जी के लिए दुनिया नहीं बनाई गई है। भगवान ने एक खास मकसद से इस दुनिया को बनाया है। एक आदमी का नफा और एक आदमी का नुकसान इस दुनिया में चलता रहता है और इसे चलना चाहिए और यह चलता रहेगा। नहीं साहब,
हमारी मर्जी चलनी चाहिए और हमारा फायदा होना चाहिए। आपको अगर हमेशा फायदा होगा तो दूसरों को नुकसान कैसे होगा।
किसे कहते हैं आप तकाम।
मित्रों,
इस तरीके से एक संतुलित दुनिया बनी हुई है। इस दुनिया को हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। हम अपनी मर्जी को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं। परिस्थितियों के मुताबिक अगर हम अपनी मर्जी को बदल लें तो हमको वह सुख मिल सकता है जिसको हम आप्तकाम कहते हैं और मंशा पूरी होना कहते हैं।
महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से जो आनंद मिल सकता है, हमको वह पूरा आनंद अपनी मर्जी को बदल लेने से मिल सकता है।
मसलन, आपकी जो इच्छाएं हैं अगर वह पूरी हो जाएं तो आप क्या ख्याल करते हैं।
गुरुजी, हमको बहुत खुशी होगी। चलिए, आपको वही खुशी महत्वाकांक्षा के पूरी हुए बिना भी मिल सकती है अगर आप अध्यात्मवाद का सहारा लेना शुरू कर दें। तब अगर आप भौतिकवाद का सहारा लिए रहेंगे तब आपको सारी जिंदगी भर यह शिकायत बनी रहेगी कि हमारी इच्छाएं पूरी न हो सकी।
चाहे कोई बड़े से बड़ा सिद्ध, महात्मा, देवता, भगवान, कोई भी आपका सहायक क्यों नहीं और कितने ही वरदान देता हुआ क्यों न चला जाए, आपको यह शिकायत हमेशा बनी रहेगी कि इस दुनिया से हम अधूरे जा रहे हैं और अपूर्ण जा रहे हैं।
मित्रों,
सिकंदर मरने के लिए हुआ तो उसने अपनी सारी दौलत मंगवाई और कहा कि हम इस दौलत को लेकर के स्वर्ग जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि यह दौलत आपके साथ नहीं जा सकती।
सिकंदर अंततः खाली हाथ चला गया था। रावण भी न जाने क्या क्या चाहता था। स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था और न जाने क्या क्या चाहता था, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा पूरी न हो सकी, अधूरी रह गई।
अपूर्ण और कामनाओं से भरा हुआ रावण दुनिया को हसरत भरी निगाहों से देखता हुआ और अधूरेपन की शिकायत करता हुआ दुनिया में से चला गया। आप क्या चाहते हैं? आप यह चाहते हैं कि दुनिया में इस जिंदगी में आप तकाम हो जाया, मनोकामनाएं पूरी हो जाया और आपको वह अलौकिक आनंद मिल जाए। अगर आप यह चाहते हैं तो आप हमारे प्रयोग का आनंद उठा सकते हैं। किसे कहते हैं सत्संग?
मित्रों,
हमने आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को केवल कहने और सुनने तक ही सीमित नहीं समझा है, जैसे कि आम लोग समझते हैं। आम लोग अध्यात्म के बावत यह ख्याल जमाए बैठे हैं कि यह कहने की और सुनने की चीजें हैं।
गुरुजी सत्संग करेंगे, गुरुजी व्याख्यान करेंगे और चेला जी सुनेंगे, पंडित जी भागवत सुनाएंगे और यजमान जी सुनेंगे। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, बस सत्संग खत्म हो गया। अब इस सत्संग का महात्म्य मिलना चाहिए और सत्संग का फल मिलना चाहिए।
बेटे, यह तो कहना सुनना हुआ, सत्संग कहाँ हुआ?
नहीं साहब, यही तो सत्संग हुआ। नहीं बेटे, यह सत्संग नहीं हुआ।
सत्संग उसे कहते हैं जिसमें किसी चीज को ग्रहण कर लिया जाता है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म को चरा जाता है, खाया जाता है, चबाया जाता है। जिस तरीके से बकरी घास को चर जाती है और उसे दूध का हिस्सा बना लेती है, उसी तरीके से आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में उत्प्रोत कर लेते हैं, तब वह हमारे लिए फलदायक हो जाते हैं और शांतिदायक हो जाते हैं।
मित्रों,
मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता इस बात पर टिकी हुई है कि उसके कलेजे पर हाथ रखकर देखा जाए और उससे यह कहते हुए पाया जाए कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो गई, अब हमारी कोई मनोकामना बाकी नहीं रही।
संस्कृत में ऐसा आदमी आप्तकाम कहलाता है और उसको वह आनंद मिलता है जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वाले को मिलना चाहिए। कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वाले को जो आनंद मिलता है, वह आनंद आपको भी मिल सकता है, जैसा कि हमने पाया है। मात्र कर्मकांड नहीं है अध्यात्म। मित्रों,
जब से अध्यात्मवाद अपने नजदीक आया और उसको हमने अपने दृष्टिकोण में, सोचने के तरीके में समावेश करना शुरू किया, माला घुमाने में नहीं। माला घुमाना तो बहुत ही सस्ती चीज है, वह तो शुरू की चीजें हैं और कमजोर चीज है। माला घुमाने भर से अगर उद्देश्य पूरे हो गए होते तो भजन करने वाले और पूजा करने वाले बाबाजी और मंदिरों के पुजारी अब तक न जाने कहां से कहां पहुंच गए होते।
क्रियाकृत्य कर्मकांड हमारे लिए काफी नहीं है। मित्रों, कर्मकांडों क्रियाकृतियों के माध्यम से हम आदमी के दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और परिवर्तन लाने का उद्देश्य पूरा करते हैं।
यही अध्यात्म है। इसी अध्यात्म को मैंने अपने जीवन में समाविष्ट करने की कोशिश की है और इसका परिणाम यह पाया कि मैं आप्तकाम हो गया। मेरी कोई कामना बाकी नहीं रही। निश्चिंत होकर के जितनी गहरी नींद में सोता हूँ, दुनिया में शायद ही कोई और आदमी सोता होगा। भंते आनंद ने लोगों से यह जिक्र किया कि भगवान बुद्ध रात में जिस करवट सोते हैं, सुबह उसी करवट से उठते हैं। शाम को जहां हाथ रख करके सो जाते हैं, सुबह वहीं पर हाथ रखा रहता है। क्या कमाल है, आपको तो रात भर करवटें बदलनी पड़ती हैं।
भगवान बुद्ध के शिष्यों ने आनंद से कहा कि तो हमको भी दिखाए। शिष्य चुपचाप बैठ गए और उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध जिस करवट सो गए थे और जहां सिर रख करके सो गए थे और जहां हाथ रखकर सो गए थे, पूरी रात 8 घंटे वे उसी करवट सोते रहे।
सवेरे जब उठे तो हाथ वहीं का वहीं रखा रहा। शिष्यों ने पूछा, आपको इतनी गहरी नींद आने की क्या वजह है?
यमदूत हैं चिंताएं।
उन्होंने कहा कि हम निश्चिंत होकर के सोते हैं। चिंताओं का भार, चिंताओं का वजन आदमी के ऊपर इतना जबरदस्त है कि इसकी वजह से सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। आदमी की जिंदगी जितनी ज्यादा चिंताओं की वजह से नष्ट होती है, उतनी बीमारियों की वजह से नष्ट नहीं होती है। सारी बीमारियों को मिलाकर तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और सारी समस्याओं को मिलाकर एक पलड़े पर रखा जाए तथा चिंताओं को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो चिंताओं वाला पलड़ा वजनदार निकलेगा। चिंता आदमी को जिस कदर खाती है, जिस कदर घुलाती है, जिस तरीके से डैक देती है, जिस तरीके से हैरान करती है, जिस तरीके से कोचती है, उसकी तुलना यमदूतों से की जा सकती है।
चिंता को मैं दूसरा यमदूत कह सकता हूँ।
चिंता आदमी को कितना हैरान कर सकती है, हम कह नहीं सकते।
भगवान बुद्ध निश्चिंत होकर के सोया करते थे। मित्रों,
मेरे जीवन का भी ऐसा ही कुछ सौभाग्य है, जो आप देखते रहते हैं कि कितना काम हमारे पास है, कितनी समस्याओं से मैं घिरा रहता हूँ, लेकिन चिंता मुझसे हजारों मील दूर पड़ी रहती है और नींद भी मुझे उसी कदर आती है जैसे महात्मा गांधी को आती थी।
एक बार वायसराय ने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया। गांधी जी मिलने के लिए गए। वायसराय ने कहलवाया कि अभी 15 मिनट की देर है, आप बैठें। गांधी जी ने कहा कि मैं रात भर का जगा हुआ हूँ, 15 मिनट सो लूंगा तो सिर हल्का हो जाएगा।
झट से उन्होंने अपना चादर सोफे पर लंबा किया और वहीं सो गए।
15 मिनट बाद जब वायसराय आए तो वे उठ बैठे।
उन्होंने कहा कि क्या बात है साहब, इतनी गहरी नींद आती है।
हाँ साहब,
गहरी नींद उसको ही आ सकती है जो चिंताओं से दूर रहता है। चिंताओं से दूर कौन रह सकता है? जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों। तो क्या हमारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं?
हाँ मित्रों,
आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसका तरीका यह नहीं है कि जो चीजें आप मांगते हैं वे आपको मिल जाएं। चलिए, अगर आपका यह ख्याल है कि जो चीजें आप मांगते हैं वह आपको दे दी जाए तो आप खुश हो जाएंगे।
हाँ हम खुश हो जाएंगे। मित्रों आइए बैठिए,
हम देखते हैं कि आप क्या चीज मांगते हैं। चलिए, आपकी मनोकामना एक चीज पाने की है, अच्छा हम दे देंगे। दूसरी चीज आप चाहते हैं, चलिए उसे भी दे देंगे। तीसरी चीज पाने की भी आपकी मनोकामना है।
ठीक है, हम तीसरी चीज भी दे देंगे, परंतु आप सबके सामने गारंटी दीजिए कि आइंदा हमें कोई शिकायत नहीं होगी और हम प्रसन्न रहेंगे।
कैकेयी ने राजा दशरथ से 3 वरदान मांगे थे और उसे 3 वरदान दे दिए गए थे, और आपको भी मैं कैकेयी की तरह से 3 वरदान दे सकता हूँ।
मांगिए क्या मांगते हैं।
लेकिन फिर आप यह शिकायत मत करना कि हमको तो अभी और कमी रह गई और अभाव रह गया। मैं समझता हूँ कि आपकी कमी न केवल ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वरन और ज्यादा हो जाएगी। इस समय आप जो अभाव लेकर के आए हैं वे कम नहीं हो सकते, वरन उससे और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जिस आधार पर, जिसके सहारे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराना चाहते हैं, वह आधार ही गलत है। सही आधार वह है जो हमें सिखाता है और आपको सिखाता है, और जिसको सिखाने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। सही अध्यात्म वह है जो कल्पवृक्ष के तरीके से है, और जिसके आधार पर हमने अध्यात्म का लाभ आप तक आम होने के रूप में पाया। आवश्यकताओं का करें मूल्यांकन।
मित्रों हमारा दृष्टिकोण यह है कि जो आवश्यक है वहां तक सीमाबद्ध रहा जाए। यह आवश्यक शब्द बड़ा टेढ़ा वाला प्रश्न है।
आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है? अगर इस बात की कसौटी की परख करना शुरू करें तो आपको हंसी आएगी कि हम जिन चीजों के लिए ख्वाहिशमंद थे गोया वे आवश्यक थी भी कि नहीं। हमारी मौलिक आवश्यकताएं इतनी कम हैं कि मैं समझता हूँ कि जानवरों से भी बहुत कम है।
बकरी को जितनी खुराक चाहिए, भैंसे को जितनी खुराक चाहिए, उतनी हमको नहीं चाहिए।
हमको तो 4 रोटी चाहिए, जिससे 6 इंच वाले पेट को हम आसानी से भर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी आदमी सवेरे भूखा उठा तो होगा, लेकिन रात को भूखा सोया नहीं होगा। जो भगवान चींटी को भोजन दे सकता है, कीट पतंगों को भोजन दे सकता है, मक्खी मच्छर को भोजन दे सकता है, तो इंसान को भोजन क्यों नहीं देगा?
इंसान को भोजन तो मिलना ही चाहिए।
मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं। कोई आप में से ऐसा है कि जिसकी आवश्यकता पूरी न होती हो? मैं समझता हूँ कि आप में से हर आदमी की आवश्यकता पूरी हो जाती है।
इसलिए मित्रों,
जिसको मौलिक आवश्यकता कहना चाहिए, भगवान ने उसका पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। माँ की छाती में से दूध के 2 कटोरे उस समय लगा करके रखे गए थे जब हम हाथ पांव चलाने की स्थिति में नहीं थे और किसी चीज को पहचानने की स्थिति में नहीं थे।
भगवान ने मनुष्य को विश्वास दिलाया था कि हम तुम्हारे लिए दूध के कटोरे भेजते हैं, तुम्हारे लिए धाय भेजते हैं, तुम्हारे लिए नौकरानी भेजते हैं,
तुम्हारे लिए रखवाली करने वाला भेजते हैं। उस वक्त इतने इंतजाम करके उसने भेजा था, और अब तो आप हाथ पांव वाले हो गए हैं। बोलना भी आपको आता है, चलना भी आता है। अब तो हम पढ़ लिख भी गए हैं। अब पेट भरने में कोई शिकायत हो सकती है क्या? नहीं, कोई शिकायत नहीं हो सकती।
हमारी मौलिक आवश्यकताएं थोड़ी हैं। मित्रों
मौलिक आवश्यकताओं पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने नए तथ्य सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। दूसरी आवश्यकताएं क्या हैं? अरे साहब, रोटी के बाद हमको तो मालूम नहीं कि हमारी क्या जरूरत है। अच्छा, आप सिनेमा वाले के पास जाइए और यह पूछकर आइए कि क्यों भाई साहब, आप बता दीजिए कि हमारी जरूरतें क्या हैं।
वह सिनेमा वाला भी आपको बता देगा कि रोटी कपड़ा और मकान,
बस इन्हीं 3 चीजों की आदमी को जरूरत है और किसी चीज की नहीं। रोटी आप में से हर आदमी को मिल जाती है और कपड़ा फटा टूटा हर आदमी को मिल जाता है। कपड़ा अगर नहीं भी मिलता हो तो संतों ने जिस तरीके से बताया था कि बिना कपड़े के भी गुजारा हो सकता है, उन्होंने हाथ में राख और मिट्टी लिया, उसमें जरा सा पानी मिलाकर शरीर के ऊपर लपेट लिया कि यह कर रहे हैं, इसे पहन रहे हैं बुशर्ट की तरह। यह कैसी बुशर्ट है
साहब?
यह मिट्टी की बुशर्ट है। आप इसे किस लिए पहनते हैं?
ठंडक न लग जाए, गर्मी न लग जाए।
देखिए, आप शर्ट पहने हुए हैं और हम नंगे बैठे हुए हैं।
हमको न तो ठंडक का असर मालूम पड़ता है और न गर्मी का।
हमने राख मिट्टी लगा ली और उसी तरह से मस्त बैठे हुए हैं जैसे आप बैठे हैं। बेटे, मिट्टी से भी कपड़े का काम चलाया जा सकता है और पत्तों या छाल से भी काम चलाया जा सकता है।
मित्रों,
कपड़े के बाद मकान का नंबर आता है। मकान चिड़ियों को मिल जाता है, कबूतरों को मिल जाता है, छिपकली को मिल जाता है। हमको भी कहीं न कहीं पेड़ के नीचे सिर छिपाने की जगह मिल सकती है या अवसर मिल सकता है।
प्रश्न यह है कि हमारी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं कि नहीं होती। हाँ बेटे, हरेक की मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
अगर हम मौलिक आवश्यकताओं पर विचार करें कि हमारे पास वास्तव में किसी चीज का अभाव है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हमारे पास कोई अभाव नहीं है। तो फिर किस चीज का अभाव है और हमारी वासनाओं का अभाव है?
हमारी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं।
इनका कोई अंत नहीं है।
ख्वाहिशों को अगर आप समेट लें तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि आप आपतकाम हो गए और आपको इतनी गहरी नींद आएगी और आप ज्यादा निश्चिंत होकर जिएंगे। मित्रों,
मैं समझता हूँ कि आपकी जिंदगी, आपकी उम्र कम से कम 20 साल लंबी हो जानी चाहिए और आपकी जवानी बहुत समय तक कायम रहनी चाहिए। वह जवानी जिसके लिए आप ढेरों पैसे खर्च करके इसे कायम रखना चाहते हैं, वह इस कीमत में खरीदी जा सकती है कि आप निश्चिंत होकर के जिंदगी जिए।
खुशी की जिंदगी जिए, हंसी की जिंदगी जिए, शांति की जिंदगी जिए, निश्चिंतता की जिंदगी जिए।
अगर आप अपने ऊपर से तृष्णाओं का वजन कम कर दें तो ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप इसका मतलब यह समझते हैं कि आदमी को काम नहीं करना चाहिए और हरामखोरी करनी चाहिए और आदमी को आलसी और संतोषी हो जाना चाहिए? बेटे, मैं ऐसा कभी भी नहीं कह सकता।
मैं इस बात का हिमायती हूँ कि आदमी को उपार्जन करना चाहिए, पैदावार करना चाहिए। जरूरी है उपार्जन। मित्रों,
उपार्जन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज को इसकी बड़ी जरूरत है। हमको अनाज पैदा करना चाहिए क्योंकि हमारे घर में अनाज है, पर दूसरों के घर में अनाज नहीं है। हमारे घर में कपड़ा है तो दूसरों के घर में कपड़ा नहीं है।
देश की पैदावार बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी को परिश्रम करना चाहिए।
बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास रोटी है वह काम नहीं करेगा, जिस आदमी के पास जीवन यापन के साधन है वह काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बेटे, मैं आलस्य का हिमायती भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात का हिमायती हूँ कि हर आदमी को चैन की जिंदगी जीनी चाहिए, शांति की जिंदगी जीनी चाहिए, संतोष की जिंदगी जीनी चाहिए और खुशी की जिंदगी जीनी चाहिए। मनुष्य को किफायतशील होकर के जीना चाहिए। मित्रों,
मैंने किफायतशील होकर के जीवन जिया है। सबसे पहले मैंने यह किफायत करने की कोशिश की कि देखूं मेरी मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं। गहराई से निरीक्षण करने पर पता चला कि मेरी जो खास आवश्यकताएं हैं और जो शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है वह है अनाज। अनाज के बारे में मैंने निश्चिंतता प्राप्त की कि जब घास छीलने वाले अपना पेट भर सकते हैं तो मैं उनसे तो सही हूँ और अपना पेट भरने के लिए दूसरे काम कर सकता हूँ। इससे विश्वास हो गया कि हमको रोटी मिल सकती है, कपड़ा मिल सकता है और रहने के लिए मकान मिल सकता है। उस दिन के बाद मुझे इतनी शांति मिली, इतनी खुशी मिली कि उस खुशी का टॉनिक पी करके और शांति का टॉनिक पी करके मैं अपनी इस 67 वर्ष की उम्र में भी भरी जवानी में बैठा हुआ हूँ।
साहब,
आपकी उम्र कितनी है? बेटे, मेरी उम्र 27 साल हो सकती है। अरे साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी उम्र 67 साल की है। हाँ बेटे, उम्र के हिसाब से तो मैं 67 वर्ष का हूँ, पर अगर तू मेरे मन के हिसाब से देखे तो मैं 27 साल का हूँ।
मित्रों,
27 साल के आदमी के अंदर जो उम्मीद होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, जो उमंग और साहब होता है, जो हिम्मत होती है, उससे राय रत्ती भर भी मेरे अंदर कमी नहीं पड़ी है। मैं ज्यों का त्यों हूँ। क्यों, क्या वजह है? आदमी की चिंताओं की वजह से, ख्वाहिशों की वजह से, तृष्णाओं की वजह से उसकी शक्तियों का जो क्षरण होता रहता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है।
मैं बहुत निश्चिंत, बड़ा फक्कर और मस्त आदमी हूँ और अपनी मस्ती लोगों को बांटता रहता हूँ।
लोग बाग मेरे पास अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने आते हैं क्योंकि मैं आपतकाम हूँ।
अगर मैं भी आपतकाम न होता और मनोकामनाओं से बना होता तो हमारे और आपके बीच जद्दोजहद खड़ी हो जाती।
किसे कहते हैं सिद्धि?
मित्रों,
हर कोई अपनी मनोकामनाएं पूरी कराना चाहता है।
गुरुजी, हमारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। चेला जी, आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए।
अरे साहब, हम क्या कर सकते हैं? बेटे, हमने तो आपको चेला इसलिए बनाया था कि आप 2-5 रुपये दे जाया करेंगे।
गुरुजी, हमने तो आपको गुरुजी इसलिए बनाया था कि आप हमको आशीर्वाद दिया करेंगे। बेटे, आशीर्वाद पीछे लेना, पहले यह देख कि हमारा कुर्ता फट गया है। एक कुर्ता लेकर क्या? अरे महाराज जी, कुर्ता तो 25 रुपये का बनता है, मैं कहाँ से लाऊंगा?
और बेटे, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए 3 साल का तप देना पड़ेगा, वह मैं कहाँ से लाऊंगा?
हमारे और आपके बीच अर्थात गुरु और चेले जी के बीच यही जद्दोजहद चलती रहती है। मित्रों,
आप तक काम ही दूसरों की मनोकामना को पूरी कर सकता है। हम अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं और आपकी जरूरतों को भी पूरा करने में समर्थ हैं।
यही सिद्धि है। हाँ बेटे, इसको मैं सिद्धि कहता हूँ।
अगर कोई मुझसे पूछे कि सिद्धि किसे कहते हैं?
बाजीगरी को। बेटे, बाजीगरी को लानत है। जो आदमी बाजीगरी को आध्यात्मिकता की निशानी मानते हैं, उनको मैं बहुत ही घटिया किस्म का इंसान मानता हूँ। यह चमत्कार दिखाए, वह चमत्कार दिखाए, बालों में से सांप निकालिए, हाथ में से इलायची निकालकर दिखाए।
बेटे, ऐसा व्यक्ति बचकाना मालूम पड़ता है, बड़ा घटिया मालूम पड़ता है। अगर तू मुझसे बाबाजी से यह आशा करेगा कि मैं वह काम करूं जो बाजीगरों को करना चाहिए, जादूगरों को करना चाहिए, तो बेटे, इस बाजीगरी के ऊपर लानत है और तेरे शिष्य होने के ऊपर लानत है और ऐसे अध्यात्मवाद को धिक्कार है।
कौन से अध्यात्मवाद को?
जो लोगों को इस बहाने अपनी ओर आकर्षित करे कि हमको चमत्कार दिखाना आता है और जादू दिखाना आता है और हम पानी से दिए जला सकते हैं और बालों में से बालू निकाल सकते हैं।
मित्रों,
यह अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। यह तो बाजीगरों का खेल है और जादूगरों का खेल है।
आज जादूगरी का और बाजीगरी का, धूर्त और मूर्ख लोगों का ऐसा जोड़ा बन गया है जैसे मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, एक धूर्त और एक मूर्ख। धूर्तों और मूर्खों ने आपस में ऐसी तुक मिला ली है, ऐसी संगति बिठा ली है कि तमाशा दिखाए, जादू दिखाए और चेला बनाइए। साहब,
हम आपके चेला तब बनेंगे जब आप जादू दिखा देंगे। उसने कहा, लो अभी दिखाते हैं बाजीगरी।
उसने बाजीगरी दिखाना शुरू किया और उसने गुरु बनाना शुरू कर दिया। आज यही बाजीगरी हर जगह फैली हुई है।
यह कोई सिद्धि नहीं है।
अध्यात्म की सिद्धियां अलग होती हैं। गायत्री की 5 सिद्धियां। मित्रों,
अध्यात्म की अगर कोई सिद्धियां हो सकती हैं, तो हमने इसकी 5 सिद्धियां अपनी जिंदगी में पाई हैं। गायत्री के 5 मुख हैं, 5 कोश हैं, 5 आनन हैं, 5 देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 5 देवताओं की सिद्धियां हमने पाई और उनमें आप तक काम की सिद्धि पहली है। उपार्जन तो मैंने बहुत सारा किया है, परंतु उन्हें उपयोग के लिए किया है, संग्रह और उपभोग के लिए नहीं किया है। बुद्धि का उपार्जन मैंने बहुत सारा किया है, लेकिन संग्रह के लिए नहीं, लोकमंगल के लिए किया है।
यही कारण है कि यह उपार्जन मुझे आनंद देता हुआ चला गया।
उपार्जन ने मेरे ऊपर रखवाली की जिम्मेदारी नहीं डाली, क्लेश की जिम्मेदारी नहीं डाली, मेरे ऊपर भार नहीं डाला।
मैं बुद्धि कमाता रहा, अकल कमाता रहा, श्रम कमाता रहा और तप कमाता रहा।
लेकिन हर चीज जो मैंने कमाई थी, वह श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए कमाता रहा, उपभोग के लिए नहीं। उपभोग नहीं, उपयोग के लिए हमारा सारा उपार्जन है। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग उसे कहते हैं जिसमें की जो भी चीज कमाई जाती है वह अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपनी औलाद की खुशी के लिए कमाई जाती है, उसे उपभोग कहते हैं। और उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग में हम यह नहीं देखते कि इसकी जरूरत किसके लिए है या जिसके लिए जरूरी है उसको देंगे। नहीं साहब, हम तो उपभोग करेंगे और अपने लिए खरीदेंगे। हमारे पास पेंशन आती है तो हम क्या करेंगे?
साहब, हम एक मोटर खरीद लेंगे। नहीं भाई साहब, रिक्शे में चले जाइए।
नहीं साहब, हम तो मोटर में सफर करेंगे।
गुरुजी,
हमने पैसा कमा लिया है
तो किसको देंगे?
पड़ोस में जो बुढ़िया रहती हैं और जिसकी आंखें अंधी हो गई हैं, मोतियाबिंद हो गया है। 50-50 रुपये में एक एक बुढ़िया की आंखों का ऑपरेशन तू करा सकता है। 5,000 रुपये में 100 बुढ़ियाओं की आंख का ऑपरेशन हो सकता है। नहीं साहब,
5,000 रुपये की अंगूठी खरीद कर लाऊंगा और अपनी बीबी को दूंगा। बेटे, अगर तू उसको दे दे तब। किसको?
जो 100 बुढ़िया हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन करा के तो उनका अंधापन दूर हो सकता है और बची हुई जिंदगी को वे काम में ला सकती हैं। उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए करें उपार्जन। नहीं साहब, मैं यह नहीं कर सकता।
मैं तो अपनी बीबी को ही दूंगा।
और गुरुजी,
एक बड़े काम से भी मैं निश्चिंत हो गया हूँ।
किस काम से बेटे? हमारे पास जो भी संपत्ति थी, हमने अपने 3 बेटों में बराबर बराबर बांट दी।
वाह
बेटे, तू तो राजा कर्ण बनकर पैदा हुआ है, जो अपनी सारी की सारी संपदा बेटों को दे आया।
हाँ महाराज जी, सारी संपत्ति बेटों को दे दी। अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई?
जब तेरे बेटे कमाने लायक हो गए थे और अपने हाथों से अपना गुजारा कर सकते थे, तो फिर तूने उन्हें क्यों दिया? नहीं महाराज जी, हम तो बेटों के अलावा किसी और को नहीं दे सकते थे। उनके अलावा हम और किसी की कल्पना नहीं कर सकते। बेटों के अलावा हमारा कोई और हकदार नहीं हो सकता। बेटों के अभाव में हमारे और कोई काम नहीं आ सकता।
हमारी सारी दौलत हमारे बेटों के लिए खर्च होनी चाहिए और हमारे लिए खर्च होनी चाहिए। मित्रों,
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हो गया उपभोग।
उपभोग करने के लिए हम जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, वह सारा का सारा उपार्जन हमारे ऊपर भार बन करके, सांप बन करके हावी हो जाता है और न केवल हमारा विनाश करता है, वरन हमारी संतानों का भी विनाश करता है। हराम का कमाया हुआ पैसा जिस किसी ने भी अपनी औलाद के लिए छोड़ा है, उसने अपना और अपनों का सत्यानाश करके छोड़ा है। आप इसे याद रखना।
समाज में जितनी भी अयाशियां, जितनी भी बदमाशियां, जितनी भी मक्कारियां पैदा हुई हैं, उसका कारण वही लोग हैं जिन्होंने दौलत कमा कमा करके अपनी औलाद के लिए जमा कर दी। अगर उन औलादों को अपने हाथ पांव से कमाने का मौका मिला होता तो न उन्होंने शराब पी होती, न उन्होंने अयाशियां की होती, न उन्होंने मक्कारियां की होती। उनको अयाश बनाने का, बदमाश बनाने का, कुमार्गगामी बनाने का पाप अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो बाप पर पड़ेगा।
किसके ऊपर पड़ेगा? जिसने की बच्चों को परिश्रमशील बनाने की अपेक्षा यह मुनासिब समझा कि उसके लिए हम ढेरों पैसा जमा करके जाएं और इसको सात पीढ़ियों तक खाने का मौका दें।
मित्रों, यह उपभोग हो गया।
उपयोग क्या है? उपयोग उसे कहते हैं जहां जिन लोगों को जरूरत है वहां उन आवश्यकताओं के लिए हम अपने ज्ञान का उपयोग, पैसे का उपयोग, बुद्धि का उपयोग, श्रम का उपयोग करते चलें तो हमारा उपार्जन सार्थक हो सकता है। मैं आप तक आम इसलिए हूं कि मैंने जो भी दौलत कमाई है, जिसमें श्रम की भी दौलत थी, ज्ञान की दौलत भी थी, उसमें हम संतोष की सांस लेते रहते हैं क्योंकि वह सही जगह पर चली गई है, अपनी जगह पर चली गई है।
जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया वह सिद्धि के लिए नहीं कमाया, स्वर्ग के लिए नहीं कमाया, न त्व काम्य राज्यम न पुनर्भवम, लोक कल्याण में लगी मेरी तपस्या। मित्रों,
मैंने अपना सारा का सारा तप आदमियों की आंखों के आंसुओं को पहुंचते हुए खत्म कर दिया।
मेरा सारा तप चला गया।
तब तो मेरे पास नहीं है।
भगवान के यहाँ मैं खाली हाथ चला जाऊंगा।
जब वहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास तप है, नहीं भगवान, मेरे पास तप नहीं है। जो कुछ भी तप था उसका एक एक कण मैंने सब बांट दिया और आपके पास खाली हाथ आ गया।
लेकिन मित्रों,
इस तरह खाली हाथ जाते समय मुझे कितनी शांति, कितनी राहत, कितना संतोष मिलेगा, कितना उत्साह उल्लास होगा, आप समझते हैं।
इतना तो मैं तप से सिद्धि ले करके जाता तो शायद वह आनंद मुझे न मिलता जो मैं बिना तप के खाली हाथ होकर के, तप के बिना, ज्ञान के बिना, पैसे के बिना, हर चीज के बिना जब जाऊंगा तो संतोष का असीम आनंद लेकर के जाऊंगा, आप तक काम होकर के जाऊंगा।
करुणावान होता है भक्त।
मित्रों,
अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को दौलत मिलती है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि उसे दौलत नहीं मिलती।
अध्यात्मवादी गरीब रह जाता है, दौलत उसके पास ठहर नहीं सकती। गुरुजी,
हम तो आपके पास इसलिए आए थे कि आप हमें लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बताएंगे और हम मालदार हो जाएंगे। नहीं बेटे, तू मालदार नहीं बन सकता। नहीं महाराज जी, आप तो हमें मालदार बना दीजिए। बेटे, मालदार बनाने के बाद भी वह तेरे पास ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि अगर तेरे हृदय में कोमलता रही, अगर तेरे हृदय में संतपन रहा, अगर तेरे हृदय में भक्ति रही, तेरे हृदय में करुणा रही, तो तू पत्थर के कलेजे वाला नहीं हो सकता।
नहीं साहब, मैं तो किसी को नहीं दूंगा। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब अपनी औलाद को दूंगा।
नहीं बेटे, तू ऐसा नहीं हो सकता।
तेरे पास अगर जब भक्ति आएगी तो उसके साथ साथ करुणा जरूर आएगी। जिस क्षण करुणा आएगी उस क्षण तेरा पत्थर जैसा, चट्टान जैसा कलेजा नहीं रह सकता।
मालदार आदमी वही हो सकता है जिसको भगवान ने पत्थर जैसा कलेजा दिया हो और चट्टान जैसा कलेजा दिया हो और जो दूसरों के दुखों को देखकर पसीजता न हो। बस वह इतना कर सकता है कि विज्ञापनबाजी के लिए अपने पास से 100-200 रुपये दे देगा कि चुन्नूलाल मुन्नूलाल ने 100 रुपया धर्मशाला के लिए पत्थर लगवाने के लिए दिया है। अखबारों में इस तरह के विज्ञापन लोग छपवाते रहते हैं कि लाला चंदूलाल ने अपनी पूजनीय माताजी की स्मृति में 51 रुपये इस धर्मशाला को दिए। बेटे, विज्ञापन के लिए तू खर्च कर सकता है, लेकिन क्या तेरा कलेजा इतना कठोर है कि जहां करुणा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है, पीड़ा पतन निवारण की आवश्यकता है और जहां देश और सारा का सारा मानव समाज कराह रहा है, उसके लिए तू खर्च नहीं कर सकता?
दृष्टिकोण के परिष्कार से बनते हैं आपके काम। मित्रों,
अगर आपके जीवन में भक्ति आएगी तो पैसा ठहर नहीं सकता, इसे आपको देना ही पड़ेगा।
फिर आपको अपना श्रम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बुद्धि देनी पड़ेगी, अकल देनी पड़ेगी और आप खाली हाथ हो जाएंगे। गरीब हो जाएंगे। मित्रों,
आप्तकाम वह आदमी है जिसने अपने दृष्टिकोण को इस हिसाब से परिष्कृत करके रखा है कि हम वस्तुओं को उपार्जित तो करेंगे पर उपभोग नहीं करेंगे। लक्ष्मी उपभोग करने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। लक्ष्मी औरत नहीं है, वेश्या नहीं है, जिसको हम दबाकर रखें और उसका उपभोग करना चाहें।
लक्ष्मी हमारी माँ है, माँ का दूध हमको भी पीना चाहिए और हमारी माँ का दूध हमारे छोटे भाई को भी पीना चाहिए। माँ का दूध हमारी छोटी बहन को भी पीना चाहिए और माँ की सेवा हमारी छोटी बहन को भी मिलनी चाहिए और छोटे भाइयों को भी मिलनी चाहिए और सारे परिवार को मिलनी चाहिए। मित्रों, माँ का उपयोग सबके लिए होना चाहिए।
नहीं साहब, हमारी माँ तो हमारे ही पैर दबाया करेगी, हमारी ही वासनाएं पूरी किया करेगी। नहीं बेटे, तेरी माँ तेरे पैर नहीं दबा सकती और न तेरी वासनाएं पूरी कर सकती है। अगर लक्ष्मी तेरे पास है तो वह तेरी माँ है और माँ का उपयोग सबके लिए होना चाहिए। नहीं साहब, लक्ष्मी माँ का तो केवल हम ही उपयोग करेंगे और कोई नहीं करेगा।
इसका अमुक फायदा हम उठाएंगे और किसी को नहीं उठाने देंगे।
नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता।
इसलिए मित्रों, हमने अपनी महत्वाकांक्षाएं बदल दी और आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा की ओर अपना बटन घुमा दिया। एक सेकंड पहले जो रेडियो स्टेशन भौतिक महत्वाकांक्षाओं का राग अलाप रहा था, हमने उसकी सुई घुमा दी। पहले सीलोन रेडियो स्टेशन बोल रहा था।
क्या गा रहा था?
बड़े बड़े गंदे फिल्मी गाने गा रहा था।
फिर आपने क्या कर दिया?
बेटे, हमने सुई घुमा दी। अब कहाँ मिला दिया?
अब विविध भारती पर मिला दिया है और अब इसमें प्रार्थना के गीत आने लगे हैं। यह क्या है?
एक सेकंड का चमत्कार है। बदल डालें अपनी महत्वाकांक्षाएं। मित्रों, हमारी भौतिक महत्वाकांक्षाओं का उद्देश्य मालदार बनना है।
हमको सेठ बनना है, अमीर बनना है।
हमको औलाद वाला बनना है, हमको अमुक वाला बनना है। किंतु मित्रों,
इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना पराये हाथ की बात है, परिस्थितियों के हाथ की बात है, दूसरों के हाथ की बात है, आपके बॉस के हाथ की बात है कि वह आपको प्रमोशन देता है कि नहीं।
साहब, हमारा लड़का पीएमटी के इम्तिहान में बैठेगा।
किस कॉलेज में जाएगा, आपके हाथ की बात है। नहीं, उसके बॉस के हाथ की बात है।
वह चाहेगा तो अच्छे नंबर दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा।
अगर बच्चे के पर्चे अच्छे नहीं, खराब गए, तो क्या यह आपके हाथ की बात है? नहीं साहब, यह पराये हाथ की बात है।
महत्वाकांक्षाएं जो हमने संजो रखी हैं, हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना पराये हाथ की बात है।
पराये लोगों की मर्जी होगी तो हमारी खुशी मिल सकती है, पराये लोगों की मर्जी नहीं होगी तो हमारी खुशी नहीं मिल सकती।
क्या है आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा? लेकिन मित्रों,
एक महत्वाकांक्षा ऐसी है जिसको पूरा करने का हक हमको है और हम उसे पूरा कर सकते हैं।
वह है हमारी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा।
आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना हमारे मुट्ठी की बात है और उसे हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। हम सच्चाई से रहेंगे और सही बोलेंगे। नहीं साहब, सत्य बोलना बड़ा कठिन है और उसमें बड़ी रुकावट है। नहीं बेटे, सत्य बोलना सबसे सरल है। बेवकूफ आदमी भी सत्य बोल सकता है, लेकिन झूठ बोलना बेहद मुश्किल है।
कैसे साहब?
काम धंधा कैसे चल रहा है
साहब? आज क्या खा करके आए? अरे, आज तो हमने परवल का शाक खाया।
परवल तो मई के महीने में होता है और यह तो मार्च का महीना है। अरे साहब,
मैं तो भूल गया,
आज तो मैंने बैगन खाया था। ऐसा झूठ एक सेकंड में पकड़ लिया जाता है। शेखीखोर सेकंडों में मालूम पड़ जाते हैं कि वे कहां से कहां की बात बोल रहे हैं।
साहब,
आप क्या पास हैं?
एमए।
पास हैं?
एमए
के कोर्स में कौन कौन सी किताबें होती हैं?
हाँ साहब, एमए
तो कर लिया, परंतु अभी भी ए
नहीं किया। बीए
करेंगे तब बताएंगे साहब।
अच्छा बताओ कि पहले बीए
होता है या एम ए? अरे साहब, हमारे जमाने में तो पहले एम ए
होता था, अब बीए होता होगा।
ऐसा झूठ सेकंडों में पकड़ जाता है और सही बात आप बोलते चले जाइए। आप बच्चे हैं तो सही बोल दीजिए कि बच्चे हैं, पागल हैं तो बोलते चले जाइए, कोई रुकावट नहीं है।
मित्रों,
अच्छा और सच्चा जीवनयापन करना बड़ा सरल है। श्रेष्ठ महत्वाकांक्षाएं पालना अच्छा है, जैसे कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, हम आत्मसंयम से रहना चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। नहीं साहब, संयम से रहना बड़ा मुश्किल है। तो सुगम क्या है? व्यभिचार करना बड़ा सुगम है। अच्छा व्यभिचार करना सरल है, तो जा पड़ोसी के घर में, फिर देख तेरे सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं कि नहीं होते। नहीं साहब, व्यभिचार बड़ा सरल है और सदाचार बड़ा कठिन है। सरल है सदाचार, प्रयत्न तो करें। नहीं बेटे, सदाचार बड़ा सरल है। देख सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान, सबकी माँ को माँ कह, बेटी से बेटी कह और अपनी मौज से रह और अपनी चारपाई पर मजे से चैन की नींद सो जा। इसमें क्या आफत आती है?
नहीं महाराज जी, यह तो बड़ा कठिन है।
चल उल्लू कहीं का, जो सबसे सरल है उसको कठिन बताता है और जो सबसे कठिन है उसको सरल बताता है।
साहब,
बेईमानी बड़ी सरल है और ईमानदारी बड़ी कठिन है।
नहीं बेटे, ईमानदारी सबसे सरल है और बेईमानी सबसे कठिन है।
इसलिए मित्रों, हमने प्रत्येक अध्यात्मवादी के तरीके से अपने महत्वाकांक्षाओं की सुई वहां से हटा दी और महापुरुष बनने की महत्वाकांक्षा के ऊपर अपने ट्रांजिस्टर की सुई बदल दी। बस फिर क्या था, मजा आ गया। गरीब से गरीब आदमी को, कंगाल से कंगाल आदमी को, बिना पढ़े हुए आदमी को महामानव बनने के लिए रुकावट नहीं है।
कबीर एक विधवा के पेट से पैदा हुए थे और एक मुसलमान जुलाहे ने उन्हें पाला, लेकिन हिंदू धर्म में उन्होंने जो ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया इसे आप सभी जानते हैं।
कोई रुकावट है क्या?
नहीं, कोई रुकावट नहीं है।
रैदास जाति के चमार थे और बिना पढ़े थे, लेकिन रैदास की कठौती में गंगा बहने लगी थी। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
अछूत आदमी, बिना पढ़े आदमी, दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, किसी को भी अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा पूरी करने में कोई रुकावट नहीं है।
महामानव बनने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों, गरीबी से गरीबी में, कंगाली से कंगाली में, मुसीबत से मुसीबत में और बेवकूफी से बेवकूफी में भी आदमी बड़ा बन सकता है, महामानव बन सकता है।
मित्रों,
गाड़ी चला करके अपना गुजारा करने वाला रैक्य भी महान बन सकता है। राजा जनक के संवाद में एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा संत कौन है।
उन्होंने कहा कि रैक्य मुनि। रैक्य कौन है?
एक गाड़ीवान है जो बैलगाड़ी चलाकर अपना गुजारा करता है। हमने उसे ब्रह्मज्ञानी के रूप में पाया।
गाड़ी चलाने वाला आदमी भी ब्रह्मज्ञानी था।
अध्यात्म की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं है और न ही सिवाय हमारी कमजोरी के कोई उसमें रुकावट डाल सकता है।
परिपक्व बनाए मानसिकता। मित्रों,
इसी तरीके से मैं आप तक काम बनता चला गया। बचपना नहीं, हमारी जवानी में प्रौढ़ता होनी चाहिए। बचपन किसे कहते हैं, बुढ़ापा किसे कहते हैं और जवानी किसे कहते हैं? बचपन उसे कहते हैं जिसमें आदमी भविष्य की कल्पना करता रहता है,
सोचता रहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो साहब बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो परियों के यहाँ जाऊंगा।
इस तरह बच्चा भविष्य की सोचता रहता है और बूढ़ा
बूढ़ा भूतकाल की बात सोचता रहता है कि हमारे बाप दादे ऐसे थे, हमारे बाप दादे हनुमान जी जैसे थे। एक दिन बर्नार्ड शॉ के यहाँ कोई हिंदुस्तानी गया। वह बताने लगा कि हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति ऐसी थी, पुराने लोग ऐसे थे।
इस पर बर्नार्ड शॉ ने कहा, बस साहब यहीं रहने दीजिए, अगर आप ज्यादा पुरानी बात कहेंगे तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि हम बंदर की संतान थे।
लोग भूतकाल की बात करते रहते हैं, जैसे कि श्रीकृष्ण भगवान ने जरासंध को मार डाला था।
अरे, उसे मार डाला तो वह गाली दे रहा होगा, तभी उसे मार दिया होगा।
नहीं महाराज जी,
पुरानी बात कहिए।
भाड़ में गई तेरी पुरानी बात। पुरानी बात तो बूढ़े आदमी करते हैं। जिनका एकाग्र मन बुढ़ापे में डूब गया है, वे पुरानी बातों का रस ले लेकर के जिंदा रहते हैं।
जैसे अरे साहब,
हमारे जमाने में तो 1 रुपये का 22 मन घी आता था।
हाँ साहब,
हमारे जमाने में भी आता था। हमारे जमाने में तो यह और भी सस्ता था और हम घी में नहाया करते थे।
ठीक है, लोग पुराने जमाने के सारे किस्से बयां करते रहते हैं, लेकिन बेटे इस जमाने में और उस जमाने में कोई विशेष फर्क नहीं था। दोनों के भाव एक थे।
उस जमाने में 18 रुपये तोले सोना बिकता था और अब हिसाब लगा लीजिए, गल्ला क्या भाव बिकता है?
150 रुपये क्विंटल बिकता है और उस भाव सोना बिकता है। सब वही भाव है, न कोई घटा है न बढ़ा है, बस रुपये की कीमत कम हो गई है।
नहीं साहब, हमारा जमाना बहुत अच्छा था।
कुछ भी अच्छा नहीं था, बस रुपये की कीमत बड़ी थी।
अब रुपये की कीमत छोटी हो गई है।
सामान की स्थिति उसी हिसाब से है जैसे पहले थी।
वर्तमान में जीते हैं जवान।
मित्रों,
बुढ़े आदमी भूतकाल की कल्पना किया करते हैं और बच्चे भविष्य की कल्पना किया करते हैं।
भविष्य में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे,
सालोक्य मुक्ति में जाएंगे।
इस तरह एक बालक भविष्य की कल्पना करता रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है, और जवान आदमी केवल वर्तमान की बात सोचते हैं, आज की बात सोचते हैं। आज हमारी क्या परिस्थितियां हैं, आज हम क्या कर सकते हैं, आज का प्रोग्राम हम आज बनाते हैं, कल की बात कल बनाएंगे।
हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है, वह प्राइमरी स्कूल के मास्टर के यहाँ शादी होकर जाने योग्य है।
इतना ही हमारे पास खर्च करने लायक साधन और पैसा है और इतनी ही हमारी लड़की पढ़ी लिखी है।
नहीं साहब,
इसके लिए प्रोफेसर ढूंढिए।
नहीं साहब, हमारी लड़की कम पढ़ी लिखी है,
हम तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर ही ढूंढेंगे। मित्रों, अपनी परिस्थितियां आज जहां हैं, उसके हिसाब से आज की स्कीम बनाइए।
हमारी परिस्थितियां आज यहां हैं और स्कीमें हम कल के हिसाब से बनाते हैं, इसलिए उनका संतुलन नहीं बन पाता है।
साधन हमारे कम होते हैं, शक्तियां हमारी कम होती हैं,